घर का उनको बना लो। इस प्रेम के द्वारा जितना सहज रूप में मिलेंगे और जो मिलेंगे वो ऐश्वर्य के द्वारा इन लोगों को जो नारद जी प्रहलाद को नारद जी को और सबको भी मिले उससे कोटि गुण ऊपर वाले वो कृष्ण मिल जाएंगे, तुमको ब्रज का प्रेम मिलेगा। इसलिए उन्होंने हरि नाम का सहारा लगा लिया जिसमें ऐश्वर्य की कोई जरूरत नहीं, चलते फिरते खाते बैठते उठते बैठते हरि नाम करो। भगवान की इन लीला कथाओं को जितना सुनेगा उस नाम में रुचि होगी वो आगे बढ़ेगा। दिन रात उसी की चिंता करो, उन्हीं की चिंता करो, काम करो और सब, किंतु चिंता करो क्या, कैसे कृष्ण मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, इसकी चिंता करो। ऊपर से सब लोग समझ रहे हो कि ये घर का काम सब ठीक कर रहा है, बाहर के साथ मिल रहा है, हंस करके बात कर रहा है, किंतु भीतर ही भीतर में सब कुछ उल्टा चल रहा है। इस प्रकार से साधन के लिए इन्होंने बतलाया है। अब दूसरे दिन बतलाएंगे, एक घंटा हो गया प्राय, सारे योद्धा और कितने लोग सब मारे गए, सब उलट उलट हो गया। कृष्ण ने चेष्टा भी दिखलाया, हम चेष्टा कर रहे हैं सुलहनामा के लिए, गए दुर्योधन से हाथ जोड़ा, सब कुछ किया, किंतु आखिर वही हुआ जो हो रहा है।
वो तो भगवान चाहते थे युद्ध हो, नहीं चाहते, चाहते
थे। भगवान चाहे ना चाहे काल शक्ति तो चाहता, तो काल शक्ति
कौन है,
काल शक्ति
तो
भगवान ही है, वही तो चाहते थे।
वो जगत को के ऊपर में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते, डायरेक्ट वो नहीं करते, उनकी विभिन्न प्रकार की शक्तियां, विभिन्न प्रकार की ये सब चीजें हैं, उनके द्वारा ये सब अपने आप ये कंट्रोल और जो कुछ करना है ये सब होता है, उस पर दखलदाजी नहीं करते। विशेष स्थिति में तो सब कुछ अब ऑटोमेटिक रूप में चलता है। इसका भी इसके लिए कुछ लाभ भी होगा, ऐसा हम तो ऊपर से देख रहे हैं, इसको भीतर में क्या चीज़ है नहीं अनुमान कर रहे हैं। अच्छा कितने आदमी मारे गए, एक भी जीव मरा, शरीर का तो रूपांतर हुआ, ये बात ठीक है। क्या क्या वो सभ्यता ही एक तरह से चौपट हो गई, वो विद्या जिससे कि मंत्र पूत करके एक बाण चलाते थे और आग लग जाती थी, हजारों मील का दूर का आदमी को निशाना मान करके मारते और देश का देश एकदम जला करके खाक कर देते, वो सब वर्षा हो जाए धनुष बाण से ही, ये सब विद्याएं थी, वो भी करीब करीब लुप्त हो गई। किंतु लाभ क्या हुआ, महाभारत जिससे कुछ लाभ हुआ कि नहीं, क्या लाभ हुआ बताइए। भौतिक रूप में सब ध्वंस हुआ, किंतु परमार्थिक रूप में ये बड़ा लाभ हुआ, जितने नास्तिक थे, धर्म के विरोधी थे, जो धर्म कर्म कुछ नहीं मानते थे, अश्रुक विचार के लोग हो गए थे, उन लोगों को कृष्ण ने चलाकी चतुराशी से उनको हटा करके, बल्कि उनको क्या किया, उनको मरवा करके मार करके और उनको मुक्ति दे दी। अब इस जगत में तुम लोगों का जन्म नहीं होगा जो बदमाशी करेगा, धर्म का विरोध करेगा, उनको मुक्ति दे दी। देखिए उनका भी कल्याण कर दिया और जगत में ये जो रहते वो लोग दुर्योधन शकुनी कर्ण दुशासन, तो ये सब भगवान का विरोधी बात बढ़ती, धर्म नष्ट हो जाता है, गीता का उपदेश नहीं आता है।
ये सब चीजें से फायदा हो गया,
ये परमार्थिक एक लाभ संसार के लिए वो दे दिया, नहीं तो वो लोग कुछ दिनों के बाद में कृष्ण नहीं रहने पर जगत का और भी विध्वंस कर भौतिक हानि होने पर भी परमार्थिक लाभ बहुत हुआ। नहीं तो फिर ये महाभारत इत्यादि का जो था विचार उपदेश अच्छे बुरे का,
इसमें क्या लाभ होगा जो
यदि कर्ण को दुर्योधन को दंड नहीं मिला होता तो वो सब लोग ऐसे लोग पनपते, होता कि नहीं? तो क्या होता, धर्म का विध्वंस ये सब हो जाता।
हम लोग देवी सुन रहे हैं, ये नहीं।
अच्छा वैभव क्या नष्ट हुआ, क्या वैभव नष्ट क्या हुआ?
पुल, रेलगाड़ी और मकान,
क्या हुआ इससे?
मिट्टी मिट्टी,
वो मिट्टी से निकला था वो लोहा लकड़, फिर उसमें मिल गया।
दो तीन और रंग भरे ऊपर हो गया
जो फाइव एलिमेंट्स
ऊपर से, ऐसा मालूम पड़ता है जी हाँ हाँ कार्य ये हो गया। एक कण भी नष्ट न हुआ किंतु स्थूलवादियों के लिए सभी कुछ हो गया,
बहुत नुकसान हुआ, इतने मिलियन डॉलर का।
लेकिन महाभारत फिर मिलियन डॉलर
मतलब परीक्षित महाराज आए, उसके बाद में परीक्षित महाराज आए दिल्ली की गद्दी पर और उन्होंने सारे भारत वर्ष में ब्रजमंडल को जो लुप्त हो गया था उसको फिर से बसाया। श्रीमद् भागवत का प्रचार हुआ देश विदेश में।
रख लो कोई और हाँ
जी। इस तरह से बहुत बड़ा भारी लाभ हुआ। ये प्रलय होता है, ये क्या प्रलय है, ये तो अभी आंशिक प्रलय भी नहीं है। ऐसा प्रलय होगा, ऐसा वर्णन है, ये सारा भूमंडल क्या ब्रह्मांड एकदम चौपट हो जाएगा, सब जल करके खाक हो जाएगा और सब पानी हो जाएगा। पानी के बाद में पानी भी हट करके केवल मात्र हवा रहेगी, हवा भी उसमें से डाइल्यूशन होकर के किस प्रकार से एकदम आकाश के शून्य के रूप में बदल जाएगा। और ये आकाश भी नहीं रहेगा, प्रकृति एकदम रहेगी शून्य। और इसको ब्रह्मा लेकर के गर्भदशाई के अंदर में चले जाएंगे, सारी सृष्टि एकदम विलुप्त हो जाएगी। किंतु नष्ट क्या हुआ?
नष्ट नहीं,
इसको उपमा दे रहे हैं, इसको उपमा दे रहे हैं। एक किसान ने खेती की, खेती करने के बाद में उसमें बीज डाला गेहूं और काफी दूर तक खेती हुई, खेत लहलहाने लग गया, चारों तरफ में हरियाली हो गई, कृषक को बड़ा आनंद हुआ। अब उसकी चौकसी देने लगा चौकीदारी, जो कोई गाय चर न जाए, और चारों तरफ से उसके लिए हद बंदी कर दी, कांटे लगा दिए। अब धीरे धीरे उसमें जबकि बाल निकल आई और जब लहलहाने लगी, देख करके उसका हृदय एकदम और भर गया आनंद से। और जब उसकी बालें पकी और उसमें गेहूं के दाने एकदम पुष्ट हो गए, तब क्या किया, जल्दी से चारों तरफ से मंच लगा करके उसकी रक्षा, ये पूरा पुष्ट हो जाए। जब पूरा पुष्ट हो गया तो जिस खेत को उसने बोया था, पौधों को रक्षा की थी, अब हंसिया लेकर के काटने लगा निष्ठुर होकर के। हैं, काटना चाहिए, वृक्ष को लगाया और उसी को काट रहा है।
अच्छा,
काट लिया और काट करके गेहूं को उझाड़ा,
गेहूं चाहिए इसीलिए तो काटा उसने।
अब काटा, सुनो तो, काट तो दिया और काट करके उसको दाने, उसको किसी प्रकार से मशीन से हो, बैलों से हो, जैसे उसको निकाले,
घोट घोट के निकाले, ऐसे भी नहीं।
और वो कहाँ रखेगा वो भूसा और ये सब, उनको जला करके खत्म कर दिया और उसको घर में रख लिया और उसमें से जो जरूरत थी उसको खाया और बाकी को रख दिया बीज, और दूसरे साल में थोड़ा सा बीज दिया और पूरा पूरा का पूरा भर गया। क्या खत्म हुआ, क्या नष्ट हुआ? यदि वो खेत को नहीं काटता तो क्या होता,
सब नष्ट हो जाता, उसमें खेत में
कोई काम नहीं आता। इसलिए महाभारत युद्ध नहीं हो, ये प्रलय न हो, प्रलय होने पर भी जीव नहीं कोई मरता, जीव अपने शुद्ध स्वरूप में रह करके ब्रह्मा जी के शरीर में रह करके प्रभु के साथ में मिल जाता है। और फिर जब इच्छा होती है प्रभु की, उन बीजों को उसमें से निकाल करके और जगत के रूप में दे करके पुरुष स्त्री पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे ये सब कुछ, फिर अब जैसा करते हैं रूपांतर होता रहता है, जीव कहीं नष्ट नहीं होता, अजर अमर है भगवान की तरफ। केवल ये सब खेती होती है अर्थात भगवान से जो भूले हुए हैं जीव हमारे जैसे ये सब, और इसमें एकदम मस्त हैं, उनको ठोकर देने के लिए ये सब दुख, ठोकर देने के लिए। मरेगा तो कोई नहीं, केवल ठोकर देने के लिए। ये चेतो, इसमें सुख नहीं है, धर्म के पथ पर रहो। चलो, और यही सर्वस्व नहीं है, एक दिन हम इसको ध्वंस कर देंगे। ये काना कौड़ी के बराबर इसका मूल्य नहीं है। प्रेम की शिक्षा करो, घर वालों से पहले प्रेम करो। पहले प्रेम किसे करो? माता पिता से प्रेम करो, जिसने जन्म दिया वो तुम्हारे लिए वही भगवान है। यही तो पहले शिक्षा, माता पिता ही गुरु है पहले। उनको कदर करना सीखो, आदर करना सीखो, प्रेम करना सीखो। फिर पत्नी से, उसके पति तुम्हारा जो कर्तव्य है, उसमें प्रेम को प्रधान रख करके काम और भोग प्रधान मत रखो। यदि काम और ये किया तो ध्वंस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा जीवन निरस हो जाएगा। इसलिए खूब सोच समझ करके प्रेम करो, काम में अंधे ना हो। इसके बाद में पास के पड़ोसी जो है सबसे प्रेम रखो, सब में भगवान है। और फिर उसके बाद में तब भगवान किसी को भेज करके अपने विशेष में देखो, सब में भगवान है किंतु फिर भी भगवान की सत्ता एक पृथक रूप में भी है ना? सब में भगवान है ये ठीक है, किंतु सभी भगवान नहीं है। सब लोटों में पानी है एक, किंतु सब लोटा एक नहीं है। समुद्र में लोटे को डुबा दो, ऊपर से दिखेगा सब पानी, किंतु लोटा भी पानी नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार से जो जीव है वो जीव ही रहेंगे, वो भगवान कभी नहीं होंगे, या ये कभी नष्ट भी नहीं होंगे। बस भगवान के साथ में वही जो प्रेम जो पहले माता पिता के प्रति था, स्त्री के प्रति था, बाल बच्चों के प्रति था, संसारिक वस्तुओं के प्रति जो प्रेम तुम्हारा था, अब उसको शुद्ध करके भगवान पर यदि लगाए तो ये लोग भी सुखी रहेंगे, तुम भी सुखी रहेगा। और यदि भगवान के प्रति तुमने प्रेम नहीं किया और इन्हीं लोगों में रहा, तो ये भी ध्वंस हो जाएंगे, तुम भी ध्वंस हो जाएगा, सब कुछ कहीं नहीं रहेगा,
फिर जापान हो जाएगा।
अभी तो क्या वो हिरोशिमा या किरोशिमा में तो इससे भी और अधिक हुआ था
कि तो
इसमें क्या हुआ?
हिरोशिमा तो बहुत सारा।
अब देखा ना, एक दो महीने का बाद में फिर नया बन जाएगा,
ठीक बन
जाएगा। किसी का कुछ जो मर गए सो तो मर गए, जन्म लेंगे फिर जो, और जो बच गए हैं वो फिर वैसी संपत्ति जो वहाँ पर करने में अधिक दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से उसको ठीक कर लेंगे।
उनमें से कोई समझ पाएगा कि ये
तो वो समझाने वाला कोई
हो?
ये तो भारतवर्ष एक ऐसा है जिसमें ये सब सांत्वना और ये सब विचार है, और कहीं नहीं है।
कहाँ पर है? भारत।
और यहाँ का विचार यदि कुछ कुछ है तो आप लोगों को सांत्वना दे सकता है, और कहीं नहीं है। हम लोगों जैसा त्यागी विषय में कहीं नहीं है। वो लोग समाज की सेवा करने वाले बहुत से हैं जो घर बार छोड़ करके करते हैं। ये पादरी लोग इस क्रिश्चियन का प्रचार करते हैं, किंतु उससे पे लेकर के हमको कोई पे देता है? हम अपनी सिद्धांत पर, विचारों पर एकदम दृढ़ होकर के, अनुभूति करके इसके क्षेत्र में उतरे। हम आप लोगों से प्यार करने के लिए, स्नेह करने के लिए, या आप लोगों से कोई चीज लेने के लिए, या कोई भौतिक चीज देने के लिए, लेने के लिए नहीं, एक दृढ़ विश्वास के साथ में सबको लेकर के भगवान के चरणों में पहुंच जाए। बस एक यही उद्देश्य, दूसरा कोई उद्देश्य ऐसा उन लोगों में नहीं है, पादरियों में और ये सब
नहीं है।
हम लोग कहेंगे भगवान से ये प्रार्थना मत करो जो प्रभु हमको रोटी और रोजी दे, ये तो तुम्हारे कर्म से मिलेगा। वो क्या कहेंगे? गॉड गिव मी ब्रेड एंड बटर। हम लोग प्रभु को ये इसके लिए कष्ट नहीं देंगे, हम ब्रेड और बैटर प्रभु को देंगे, तुम ये खाओ। अब जो हमारा खाने के लिए इसलिए संसारिक चीज कोई नष्ट भी हो जाए उसके लिए चिंता करने की कोई जो हमारा कुछ भी नहीं गया। कोई यदि भक्ति हानि हुई, प्रभु के प्रति जो प्रीति है, हमारे शास्त्रों के प्रति जो श्रद्धा, ये यदि टूटी तो सभी कुछ गया, और बाकी कुछ नहीं है। उसको तो हम लोग छोड़ करके आए, देख रहे हैं ना? चैतन्य महाप्रभु जी को देखो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बाघ भालू सबको नचाते हुए हरिनाम देते हुए और छोड़कर के चलते। विष्णु प्रिया जी को देखा है?
सुना है।
कैसा प्यार, अभी छोटी सी लड़की उसको छोड़ करके चले गए, गंगा में कूद गए। हमारे हमारे बाद में हमारी स्त्री क्या खाएगी, मैया कहाँ रहेगी, क्या करेगी? तो देखते हैं कि विश्व ब्रह्मांड का पालन करने वाले जो हैं इसी को केवल छोड़ करके बाकी सबको करेंगे, इस मैया को नहीं करेंगे। इसलिए आत्मविश्वास रखना। द्रौपदी पांचों पतियों के साथ में जब राज्य को छोड़ करके हार गए जुए में, सब कुछ छोड़, इतना बड़ा भारी इंद्रप्रस्थ का वैभव छोड़ करके, कपड़े लगते तक भी उनके संग, और छोड़ करके वन की तरफ में जा रहे हैं, उसमें क्या स्थिति होगी बोलो तो? वो तो भगवत भक्त थी और ये लोग भगवान के भक्त है, इसलिए कोई परवाह नहीं। हम लोग रहते तो देखते भी क्या। कभी भी कोई संसारिक कष्ट है उसको समझो, ये हमारे लिए विघ्न नहीं,
सिखाने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए।
हमको आगे बढ़ाने के लिए है। यदि संसार में विघ्न बाधा न हो, कोई आदमी उन्नत नहीं हो सकता है। मैं कल स्वामी जी की बात कर रहा था, ऋषि भक्ति वेदांत जी का, उन्होंने कलकत्ते में सबसे पहले युवावस्था में एक बंगाल कमिकल में मैनेजरी का पद लिया, मैनेजर हुए, बड़े ब्रिलियंट थे, और कुछ दिनों में उसको चमका दिया, उसकी आमदनी चौगुनी पचगुनी करा दिया। अब उन्होंने सोचा जैसे अब मैं पृथक करके कोई केमिकल का कोई कुछ कारखाना आरंभ करूं, और उन्होंने आकर के इलाहाबाद में उसको छोड़ दिया और बड़ा बिजनेस बनाने के लिए वहाँ पर स्थापित की। और इसी बीच में प्रभुपाद जी से भेंट हो गई, जिस भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने मंत्र लिया, दीक्षा हुई, और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी ने कहा था कि अंग्रेजी में
ट्रांसलेशन करना,
नहीं अंग्रेजी में कोई प्रबंध लिखो, बैक टू गॉड है पीछे हुआ, पहले था
हारमोनिस्ट
प्रभुपाद जी के संग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संग, उसमें प्रबंध दो और इसका तुम प्रचार करो, तुमको हम एडिटर कर देते हैं, और पाश्चात्य देशों में तुम प्रचार करना। उस समय में ये कर रहे थे जब मुझको बहुत डर लगा, मैं डर गया। भागवत का एक श्लोक उन्होंने देखा, जदाजस्य अनुग्रहणामि
हरिष्ये
तद्धनं, हरिष्ये हरण करूंगा, सनई
धीरे
धीरे धीरे, धनई धनई माने क्या, धन मैंने क्या, स्त्री धन, पुत्र धन, गोधन, ये रुपया पैसे का धन, ये संसार में जिसको हम अपना धन मानते हैं, संपत्ति मानते हैं, क्रमशः जिसको मैं स्नेह करता हूँ, जिस पर निष्कपट दया करता हूँ, क्योंकि इसी का नाम संसार को भवसागर को पार करना है, तो सनई सनई, वो कहते हैं प्रभु एक ही बार कर लेते सनई सनई क्यों करते हैं,
एक बार करने में सहन नहीं कर पाएंगे,
सहन नहीं कर पाएंगे,
हाँ, इसलिए कभी कभी हरण करके थोड़ा सा दे देते हैं, अच्छा अब मिला,
सुख के साथ दुख भी देते,
थोड़ा सा और ले लेते हैं,
दुख के साथ सुख भी दे देते
हैं, और धीरे धीरे कुछ करते करते तो स्वामी जी कह रहे थे हमसे कह रहे हैं, अभी संन्यास नहीं लिए हुए, अभी विचार चल रहा है, हमने कहा जी संन्यास लीजिए, और गुरु जी महाराज जी उस समय आ गए, उन्होंने कहा भी जी संन्यास लीजिए, और एक बूढ़े थे 94 वर्ष के, कहे तुम संन्यास लेगा तो हम भी तुम्हारे साथ में हम संन्यास लेंगे,
मुनि महाराज जी,
मुनि महाराज थे 95 वर्ष की उम्र में,
उनको स्वप्न भी आया था प्रभुपाद,
तो वो तो पीछे की बात रही, पहले तो सुनो तो ये प्रैक्टिकल क्या हुआ। तुम से कह रहे थे जी मैं डरता था ये क्या होगा, हरे ये हमारा ये सब कुछ हरण कर लेंगे, तो देखा जे जब फैक्ट्री जब अलग से मेडिकल हमने किया,
केमिकल
काफी उसमें लोगों को रखा और चलने लगा काम, किंतु कुछ दिनों में वो कारोबार हमारा ठप हो गया, मैं नहीं चला सका, तो उसको मैंने बेच दिया, तो बेच दिया, तब क्या करूँ? तो एक मेडिकल की दुकान करूँ, क्योंकि हमको मेडिकल की ये सब ज्ञान है। बस हमने जवाहरलाल के नेहरू के कोठी के पास ही में चौरास्ते पर हमने एक अच्छी सी दुकान की, और दुकानों में दुकान दवाइयाँ और ये सब भर करके सब ठीक। एक दो बरस चली, और इसके बाद में बहुत चेष्टा करने पर भी उस दुकान को भी बेच दिया। तब मैं एजेंसी करने लगा, एजेंसी लेकर के वहाँ पर दवा देना, दिल्ली में ले आना, लखनऊ में इधर ये करने लगा। कुछ दिनों के बाद में वो भी सब खत्म हो गया, एक पैसे नहीं रहे, जो क्या खाऊं? मैंने कहा जैसे वो कह रहे थे हमसे, मैंने कहा जैसे मैं जो डर रहा था वही हुआ, मैं जो कोई काम हाथ में लेता हूँ ऐसा हमारा दुर्भाग्य, ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। अब बिजनेस अब कुछ है नहीं जो मैं कर सकूँ। उसी समय में असहाय होकर के मठ में आए थे। हमने कहा जी ये तो प्रभु की बड़ी आप पर कृपा हुई, आपकी स्त्री आपको प्यार करती है? आप तो नहीं, तो वो तो कहती है जैसे पैसा नहीं लाता ये अलग हो जाए तो बल्कि इसका भार हम लोगों को पड़ा। बेटों ने कहा जी सब पिताजी अब तो कुछ कमाता नहीं है, कुछ देता नहीं है, तो क्या होगा, ये अलग ही रहे तो अच्छा है, चले जाए सर। आपको संसार वाले कौन चाहते हैं? अब तो कोई नहीं चाहता, तो आप किस लिए बैठे हैं बतलाइए, तो आप जल्दी से संन्यास लेकर के भगवान का भक्ति कीजिए, प्रचार की देखिए, जैसे ये वैभव तो आपके चरणों में लौटेगा। तो अब इसका उत्तर, इसका मतलब है जैसे आप धीरे धीरे ग्रहण कर रहे हैं। गुरुजी आए, उनसे एक बार कहा, गुरुजी की बात मान गए, अब ये तय हुआ कि जैसे संन्यास लेंगे। बस विश्वरूप जी का जिस दिन खौर होता है कार्तिक महीने में पहले
भाद्रव में,
उस समय में उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद में कुछ दिनों के बाद में दिल्ली आए, और दिल्ली से ही वहाँ जाने की अमेरिका में व्यवस्था हुई, और कुछ दिनों में वह विश्व का वैभव जो लाख बार कारोबार करते उनके चरणों में डोलने लगा, बिना मांगे आया कि नहीं, करोड़ करोड़ नहीं, और प्रतिष्ठा घर में रहते तो उनको उनके पीठ पर सूप चलता, सूप जानती है, पत्नी बिगड़ करके कही आज कुछ ले आए नहीं, एक सूप मारा सूप देखा है कभी?
फटकार
तुम लोग कहाँ से देखेगी, सब मशीन हो
सार सार को गही करे थोत दे उड़ाए
थोथे को उड़ा देती है, तो उस सूप से मार दिया पति को। अरे उनका नाम सुना है तुकाराम का? तुकाराम जी धनी आदमी थे, भगवान का भजन करने लगे, धीरे धीरे संसारिक चीजों के प्रति उदासीन हो गए, जैसे रामचंद्र जी हैं, कार खड़ी कर दिया बाहर में, कार का दरवाजा खुला है,
लापरवाही से किया
लेकिन तो ख्याल नहीं है ना, और आराम के साथ में लुटाने वाले आए और निकाल करके चले। घर में आने वाला सामान भी लोगों को दे देते। एक दिन उनके घर में खाने का भी नहीं रहा,
वो भी आने वाला है।
हम तो कहीं नहीं गए, हम तुमको लेकर के वृंदावन में बैठा लेंगे अपनी गोदी में। कोई चिंता नहीं रहेगी, दोनों हाथ से बांसुरी बजाना। तो वो तुकाराम जी दिन रात जहाँ मिलते कोई बस टोली लेकर के बैठ जाते और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कुछ दिनों में ऐसी नौबत आई जो घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं रहा। गन्ना का खेत बोया था, तो घर खेत में गन्ना था, तो उसकी पत्नी ने कहा जैसे और कुछ तो ले नहीं आया, तो ऐसा कर ये गन्ना मैं काट ले आती हूँ, पास ही है, कोई लज्जा की बात नहीं है, और ये गन्ने ले जा करके वहाँ पर बेच देना बाजार में, और जो कुछ मिलेगा उसका चावल डाल या आटा ले आना, सब्जी और रसोई बने, तब तुम्हारे ठाकुर जी भी कुछ खाएंगे नहीं तो ये भी उपवास रहेंगे। अरे अच्छी बात है, ऐसे ही कर दो, मैं तो काटना नहीं जानता, तुम भी काट लाओ। तो उनकी स्त्री गई काट करके ले आई, ले करके उसको साफ सुथरा कर करके बैंडल बांध दिया, का जैसे सिर पर उठा दिया, जाओ बाजार में। तो गए तो पास ही में कुछ बच्चे खेल रहे थे बाजार के पहले ही, दे करके अरे मामू 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 ये हमको दे दो हमको लेंगे, बस खींचने लगे तो उन्होंने काट काट करके सब बच्चों को, बस एक केवल बचा, कहा जी अब इसको क्या बेचूं। वहीं से वो गन्ना लेकर के आए तो उनकी पत्नी तो पहले से जली भुली हुई थी, गन्ने को बेच तो आए किंतु चावल और ये आटे की तो गठरी नहीं देख रही, वो कहाँ गई। तो वो कुछ चुप रहे, इसके बाद में बोले अरे बतलाओ ना वो कहाँ गई गठरी, किसी को दे आए तो गठरी तो नहीं, वो तो मैं बच्चे लपक पड़े और मांगने लगे तो मैंने उनको बांट दिया, केवल यही बची उनके हाथ से ले लिया और पीठ पर जो ही मारा तो वो टूट गई बीच में, तो ये हंसने लगे तो और बिगड़ गई। कुछ तू हंस रहा है आज खाने के लिए, तू निठल रहा है ऐसे ही चला आया, अब जो होना सो तो हुआ, अब क्या करेगी। तो उन्होंने मारा तो इन्होंने दोनों डंडों को ले लिया, ले करके देख ये हमको तोड़ना पड़ता, हमको कष्ट होता, ये तो तुमने ही तोड़ दिया। अब तुम ये खा लो। ये भगवान की क्या जाने इसमें क्या समझते हैं। कोई चिंता मत,
परंपरा से है।
अरे विदुर जैसे भक्तों को उनको बतलाओ ना कहा राजा जो दुर्धन के द्वारा उनको निकलवा दिया। तो वो बोले अच्छा भाई हमको निकाल दिया तो मैं बहुत दिनों से निकलना चाहता था, मेरे लिए तो अच्छा हुआ। जो दुर्धन ने कहा इस बदमाश को यहाँ से जिस पत्ते में खाता उसी में छेद करता, और भगवान दुर्योधन के यहाँ नहीं गए, पानी भी नहीं लिया, और उसी विदुरानी के यहाँ घर में जा करके मैं भूखा हूँ मुझको कुछ खिलाओ, ऐसा कहीं नहीं कहते। तो बतलाओ तो विदुरानी की कैसी सौभाग्यवती है, तुम्हारे घर में आए। बोले जी मुझको बहुत भूख लगी है, आज तुम केले के छिलके हटाकर छिलका दे दो, और उसमें ये ध्यान नहीं कि क्या खाया जाता है, वो तो फेंक दिया और छिलके दे। और कृष्ण प्रेम में विभोर करके आंखों में आंसू आ गए, बोले द्वारका की रानियां जो देती हैं उसमें वो मिठास नहीं जो इस छिलके में मिठास। उसके पति विदुर आए, बोले क्या खिला रही है, कहे चुप रहो,
कृष्ण मना कर रहे
आज हमको वो आनंद आ रहा है, मुझे केले की जरूरत नहीं,
प्रेम
मुझे और कोई खाद्य की कोई कमी नहीं, मैं भूखा नहीं मैं प्रेम का भूखा, ये प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। तो भगवान इस प्रेम को सब कुछ चला जाएगा, प्रेम जाएगा ये नहीं जाना चाहिए, ये जाने से सभी कुछ चलता
है। संसारी चीजें जाए उसके बाद ये भी आवश्यक है कि भक्ति भी मिले, उसका भी स्वभाव।
भगवान देख सुन करके विचार करते हैं, वो देखते हैं कि यदि इसमें फंस जाएगा तो उसको नहीं देंगे, जो फंसेगा नहीं उसको पांडवों जैसा विश्व ब्रह्मांड का वैभव देंगे। महाराज अम्बरीश ये राजा जनक उनको कैसी सुंदर लड़की दी, इतना बड़ा भारी राज्य दिया और जिसमें उनका तनिक भी मोह नहीं है, घर में आग लग रही है और वो जैसे के तैसे रहे ऐसे सब, वो समझते हैं जिसका क्या मूल्य है। शंकर जी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं ना, मुंड माला
खोपड़ियों
और सूखी हुई खोपड़ी और
श्वसन का राग लगा देते
हैं, राख लगाते हैं, ये संसार वैसा ही है, सब कुछ ऐसा राख और मुंड माला की है, और संसार वाले जो कुछ चाहते हैं उनको अपने नंगे रहेंगे, सांप की माला पहनेंगे, दूसरों को जो भी चाहेगा उसको दे, ये विष है। किंतु इसकी एक चीज की सिफत है, किसी चीज में अर्थ में दोष नहीं है,
व्यवहार में दोष है,
स्त्री में दोष नहीं है, पति में दोष नहीं है, बेटे में दोष नहीं है, धन में दोष नहीं है, व्यवहार के ऊपर में सब कुछ है। यदि उसका सद्व्यवहार कर सकें, भगवान का समझ करके लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को भक्तिमान करने के लिए, तो ये सब चीज़ बारह बज गया है ना,
12:35
हो गया। भोग लगाया, लगाओ।
जो भी हमें इस जीवन जीवन में मिलेगा पिछले जीवन के कर्मों के हिसाब से मिलेगा, जितना भी है सब उसका सबका कोटा निश्चित है जितना हमें मिलना है, तो उसके लिए फिर हमें प्रयत्न करने की जरूरत है, कर्म करने की जरूरत है कि नहीं?
इसका विचार एक नहीं है। एक आदमी ने एक आदमी को खून किया, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? आपके घर में डकैत आया और सबको मार रहा था, एक आदमी को मार भी दिया, और आपने यदि उसको मार दिया तो इसके बदले में आपको फांसी होगी,
इनाम
क्या होगा? इसलिए सब चीजों का एक बंधा हुआ कोई राय नहीं है, विचार नहीं है। उस विचार के गुरुत्व के ऊपर में, हत्या के गुरुत्व के ऊपर में, किस लिए हत्या की? कोई अपने द्वेष से किया है या किसी कारण से किया है, और उसका कारण अपने लिए स्वार्थ था या जगत के हित के लिए था या उसके अच्छा के लिए था, या इच्छा नहीं अपने आप वो बंदूक लग गई, क्या उसमें था? इस पर विचार करके तो होगा, और उसके अनुसार में कमी बेशी दंड अथवा पुरस्कार इत सब मिलेगा। उसी प्रकार से पूर्व पूर्व जन्मों के अनुसार में हमारा ये शरीर मिला, ये तो ठीक है, इसलिए इसको प्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध शरीर कहते हैं। जीवन के आरंभ से, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप यदि कुछ भी नहीं करेंगे तो उसके अनुसार जो फल मिलने वाला है जरूर मिलेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता, जरूर मिलेगा वो। किंतु भी इसमें है,
किंतु भी है,
किंतु भी क्या किंतु है? हम लोग केवल जड़ वस्तु नहीं है, पशु पक्षी कीट पतंग देवता तक भी अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग करने के लिए बाध्य हैं, किंतु मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। एक बैल है, बैल आपको सिंह से उठाया और गिरा दिया, मर गए आप, उस बैल को दंड मिलेगा कि नहीं? फांसी उसको मिलेगी, कोर्ट में विचार होगा, क्यों? ज्ञान तो उसको पक्का ज्ञान है, आप जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक वो मारेगा नहीं। हमने देखा है बच्चा एक सो आया है और गाय आई, बच्चे को पैर नहीं दे करके शिकर स्थिति में कूद करके उधर में चली गई, वो भी अपने बच्चे से प्यार करती है, बुद्धि नहीं रहती, विवेक नहीं होता तो प्यार करती। आप उसको चूचू करके यहाँ पर जरा लगा दीजिए हाथ, अपने आप शांत होकर के काम करा करके आपसे प्यार करेगी,
और कहेगा करो।
एक कुत्ते को ऐसा ऐसा कीजिए, देखिए कुछ दे करके ऐसा हिलाता हुआ आपको, उसमें विवेक नहीं है। हाथियों में, कुत्तों में भविष्य का भी ज्ञान होता है, किंतु उनमें यह है भोग जोनी है, कर्म जोनी नहीं। वो अपने कर्मों का फल भोगेंगे, किंतु उसको अपना कर्मों का फल उसको क्षय कर देगी, समझ रहे हैं, नष्ट कर, उसका लिए वो नया कर्म नहीं बनेगा मरना। और हम अपने कर्मों को जो भोग रहे हैं, हमको किसी ने मारा एक थप्पड़, यहाँ तक तो प्रारब्ध कर्म है, अब जो मारा उसने, उससे मैं शांतिपूर्वक रहा, काजी ये पूर्व कर्मों का फल है, इसलिए हमको कोई इसके बदले में रिवेंज नहीं लेना है, वो शांत है। यदि ऐसा नहीं किया और उसने उसको भी दो थप्पड़ मारा, उसके लिए नया कर्म बन गया, अब उसको भोगना पड़ेगा, उसे समझ रहे हैं। दूसरी बात, उसने आपको अपमानित किया, आपने उसे गले से लगाया और उसे काट दिया या शूट कर दिया, आपने तो, आपको तो उसने अपमान किया है इसलिए कि आपका कर्मों का क्षय करा रहा था, पूर्व जन्म का कर्मों का ये फल था, किंतु आपने ये जो मारा ये आपके कर्मों का फल नहीं है,
नया कर्म बन,
समझ रहे हैं इस चीज को? ये पशुओं में, देवताओं में पशु के, मनुष्य के अतिरिक्त और किसी जगह ऐसा नियम नहीं है। ये मनुष्य जीवन के लिए ही, उसमें विवेक कुछ अधिक है, शास्त्रों का ज्ञान है, साधु संतों का उपदेश है, माता पिता का उपदेश बचपन से ही असमर्थ है तभी आप कर रहे हैं। वो उपदेश नहीं सुन सकते, उनको धारणा शक्ति नहीं है, इसलिए आपके लिए तो वो कर्म बन गया, उनके लिए कर्म नहीं बना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको कोई बीमारी हुई, बीमारी किस लिए हुई? उस जन्म के कर्म से या इस जन्म के कर्म से? इस जन्म के कर्म से असावधानी रहे, ठंड पड़ रही है और आपने बर्फ लेकर के पी लिया,
गला खराब हो गया,
गला खराब हो गया। इसके लिए पूर्व कर्म कर की कोई बात नहीं, इसी जन्म का ही वो कर्मों का फल है। आपने किसी को अपमानित कर दिया और उसने आपको अपमान कर दिया, इस जन्म का ही कर्मों का फल है। किंतु इसके साथ साथ में लाखों जन्मों के कर्म इकट्ठे होकर के ये शरीर बना है, तो उनमें ये विवेक नहीं है कि इसको हम खाए कैसे करें। हम तो यहाँ कर लेते हैं, हमारा जो पूर्व जन्म का कर्म है अपने एनर्जी से उसको खय कर सकते हैं। कैसे? हमने लाख रुपए कमाए हैं, हम एक केस में गए और हम पर केस मर्डर का है, हमने क्या किया, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया दे दिया घोष। ये क्या दिया? आपने एनर्जी तो दिया और उससे हम बच करके निकल आए। हो सकता है कि प्रभु के आँखों में आप नहीं बचे, इन्होंने तो बचाई दिया है लोगों की दृष्टि में, ये एनर्जी है। आप बीमार पड़े, औषधि खा ली, पशु तो नहीं खा सकते, पशु को आप खिलाएंगे तो खाएंगे। तो इस तरह से हम कर्मों को कुछ दान पुण्य अच्छा ये सब काम में व्यवहार में लगा करके कुछ अपने को कम कर लेते हैं। और एक होता है यदि भगवान की भक्ति की, ये अमोघ बाण है, अच्छे बुरे जितने कर्म हैं सब को नष्ट करके और भगवान की भक्ति, उसको कुछ भी भोग नहीं करना। अजामिल ने लाखों आदमियों को मारा, वाल्मीकि जी ने लाखों आदमियों को मारा, उनको फल भोगना पड़ा कुछ? उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म, ब्रह्म के समान निर्विकार होकर के हो गए। अजामिल ने कितना पाप किया, फल नहीं भोगना पड़ा। क्यों? भगवान का नाम करने से, वो भी हृदय से प्रेम से साथ में किया, उनका सब कुछ पाप ताप जितना था सब, यदि अपने प्रारब्ध कर्म को नष्ट करना चाहते हैं, दुखों को दूर करना भी चाहते हैं, तो भगवान का नाम बड़े धूम के साथ कर्मों के सस्ता। यदि कोई शरणागत होता है तो उसको सबसे, भगवान को पता भी नहीं होता, वो निर्मल भी हो जाता है, सब छूट जाता है अपने आप, ऐसी सब व्यवस्थाएं उन्होंने की। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, तद ब्रह्म साक्षात निष्ठयापि बिना समायात बिना अनुभोगी अपितु नाम स्फुरणे तत्ते प्रारब्ध कर्मोत विरोध। शंकराचार्य जैसे लोग हैं एकदम ज्ञान के टॉप पर हैं, जगत झूठा है, हम ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, किंतु उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कौन? ये प्रारब्ध जो शरीर बना है। किंतु जो लोग नाम का सहारा लेते हैं, अपितु नाम स्फुरणे तत्, एक नाम यदि उसके शुद्ध रूप में स्फूर्ति हो जाए तो क्या होगा, सब जितना प्रारब्ध कर्म सब कुछ नष्ट। यदि प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गया तो जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर कैसे चलेगा, तो उसके लिए प्रभो अनुग्रह करके अपने विधान से, तब खुद प्रारब्ध नहीं है उसके जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर देते हैं। उसमें भक्तों का दुख और सुख ये अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार नहीं, जैसे कुंती देवी, ये द्रौपदी, पांडवों का दुख, सीता जी का, ये कर्म के लिए नहीं है। सीता जी को कौन सा कर्म किया था जो उनको वन में जाना पड़ा? ये प्रारब्ध नहीं, ये प्रभु की लीला और इच्छा। ऐसे भक्तों में देखेंगे, भक्त लोगों को ऐसे मालूम होता है कि बड़े गरीब हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, न किसी का लेना न किसी का देना, शांति के साथ में प्रदान कर देंगे। इसलिए इस सब के बहुत से विचार हैं। प्रारब्ध कर्म भोग करना भी पड़ सकता है प्रभु यदि करें, किंतु नाम में वो शक्ति है जो इस सबको, नाम ही में नहीं भक्ति में भी, भगवान की कथा जो सुन रहे हैं इसमें भी वो शक्ति है। भगवान का स्मरण करने से, भगवान का मूर्ति दर्शन करने से, वृंदावन धाम इत्यादि जाने से
प्रारब्ध क्षय हो जाते हैं।
और जब ताली बजा दिया, हाथ उठा करके हरी बोल करके वृंदावन में चली आई, तो उसके पति उसके पीछे पीछे डोल रहे हैं, पैरों में गिर रहे। खाने की कमी हुई, किस चीज़ की कमी हुई? प्रतिष्ठा की कमी हुई। आखिर सारा जगत ही अपनी श्रद्धा लेकर के, पुष्प लेकर के उनके चरणों में। अभी तक कौन ऐसा है जो मीराबाई को श्रद्धा नहीं करता? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अपना कर्तव्य करेंगे, भजन करेंगे, और जैसी स्थिति आएगी ताली बजा करके हरी बोल हरी बोल हरी
गौर प्रेमानंदे हरि हरि
बोल। एक मामन इसे धरिए तो करताल निकाल दिया। क्या था बदल गया? तो ऐसे ही यशोदा जी के पिताजी ने एक नाम रखा, मैया ने एक नाम रख दिया, दादी ने एक नाम रख दिया। जो जैसा प्यार करता है प्यार से वैसा ही नाम रखा। तो उनके पिताजी ने एक नाम रख दिया, मैया ने एक नाम रख दिया, तो इनका यशोदा नाम भी है, यश देने वाली, कृष्ण को जन्म दे करके विश्व ब्रह्मांड में यश को देने वाली है, इसलिए यशोदा। और देवकी, देव जिससे उत्पन्न होते हैं, देव कौन? गोविंद देव जिसे प्रकट होते हैं, वो देवकी उनको जन्म देने वाली देव को, वो यशोदा को ही कहा गया है। किंतु कभी कभी गोपियां कृष्ण पर बिगड़ जाती हैं विरह में। हम आपके लिए पति स्त्री पुत्र परिवार लोक लज्जा धर्म श्रुति सब कुछ आपको छोड़ करके आपके चरणों में आई, आपकी सेवा की, और आप हमें अकेली इस वन में, गंभीर वन में छोड़ करके चले गए। आपके जैसा और कोई निष्ठुर व्यक्ति नहीं है। आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप देवकी के ही पुत्र हैं। यशोदा मैया तो मक्खन से भी अधिक सीधी शादी है, बड़ी कोमल भाव वाली है, बड़ी दयालु है,
सब दुख को समझती है,
वो दुखों को समझती है। किंतु देवकी इतनी निष्ठुर है, कैसी निष्ठुर है कि कृष्ण को यशोदा जी से अलग करने के लिए छल बल कल से उनको मथुरा में रख लिया। वो कठोर खेत, लाखों लोग उनके लिए मर रहे हैं, वो चिंता नहीं, अपने स्वार्थ में डूबी है। इसलिए निश्चित रूप में तुम ऐसे स्वार्थी कठोर हृदय देवकी के पुत्र हो। एक एक शब्दों में बहुत सी चीज।
आज आपने पहले बताया हरिओम पुराण में भी आपने बताया था एक बार, दे नाम ने नंद भारजा दशोदा देव,
वही तो बतलाया।
हाँ
ना, समझ गई। कभी कभी गोपियां उनको सौरी कहा, सूर वंश है, वसुदेव जी आए थे, सूर वंश के राजा थे, तो सूर सेन से सौरी हो गया, तो कृष्ण को गोपियों ने सौरी कहा। सौरी इसलिए कहा, जो क्षत्रिय लोग बड़े कठोर हृदय के होते हैं, सूरवीर होते हैं ना, किसी को भी मार डालेंगे, अपना भाई भी यदि लड़ने के लिए आए तो उसको छोड़ेंगे नहीं। कारण तो अर्जुन का भाई था ना, तो कर्ण उनके ज्ञान का प्यासा था और अर्जुन उसके,
बाली सुग्रीव दोनों भाई लड़े,
दोनों भाई थे, लड़ गए, एक को मार डाला या मरवाया। इसलिए ये लोग जादव हैं, सूर वंश के लोगों को जादव कहते हैं, वो वंशी है। तो वो सूर वंश के आप क्षत्रिय हैं, कभी भी आप गोप नहीं हैं, सरल सीधे व्यवहार वाले नहीं हैं, प्रेम करना नहीं जानते ना? आप क्षत्रिय हैं, राम जैसे सीता जी को भी छोड़ दिया, आप ऐसे ही हैं निष्ठुर, इसलिए सौरी कहते हैं। इसी तरह से जब कभी उनको इस रूप में बुलाया तो कैसे कैसे भाव मंग उस समय उठते हैं ना, विरह में और मिलन में नहीं, मिलन में आनंद में बस प्रेम के साथ में जैसा व्यवहार होता है। और जब पानी खौलता है, काफी पानी रहे तो नीचे से ऊपर आता है ना, ऊपर से नीचे जाता है, टकपक करता है, कोई एक तिनका उसमें डाल दो तो क्या होगा, वो ऊपर में दिखेगा थोड़े समय के लिए और फिर नीचे चला जाएगा, फिर नीचे से आते आते राउंड में ऊपर आएगा, फिर देखेगा जहाँ पकड़ने के लिए जाओ तब झट डूब गए। तो ऐसे विरह में कृष्ण के लिए क्रोध मान और उनके लिए कोप, उनके गुणों में भी दोष देखता है, उनके जितने भी गुण हैं उन गुणों में भी वो दोष ही खोजता है। ऐसा होता है, यहाँ तक कि नंद जी यशोदा जी भी कभी कभी कृष्ण के ऊपर में बिगड़ जाते हैं। उद्धव कहते हैं ये भगवान है, अच्छा ये भगवान हो गया तो ऐसे भगवान के चरणों में हमारा मति बन गया, ये किंतु कहते हैं विरह में, मिलन में नहीं। कृष्ण को कभी भी भगवान नहीं समझा, भगवान की भूमिका में प्रेम नहीं हुआ। सेवा हाथ जोड़ करके वंदना स्तव स्तुति हो ब्रज, ये मथुरा में द्वारका में बैकुंठ में, इसलिए ब्रज में केवल प्रेम का भाव है।